السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں کہ جس جگہ کا پاکستان میں بہت تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان نہیں پوری دنیا کو اس جگہ کا تعارف ہونا چاہیے. اور جب میں یہ پوری جب آپ تفصیل جانیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. یہ ہماری بہن ہیں سبینہ کھتری صاحبہ, اور یہ جو جگہ ہے یہ ہے لیاری, جو کہ کراچی کا ایک مرکزی علاقہ ہے, بہت گنجان, بہت مشہور. اور اب اس کی مشہوری کی جو ایک وجہ فٹ بال بھی ہوگی, اور ایک وجہ جو ہے وہ ایک اور ادارہ ہوگا جس کا نام ہے کرن فاؤنڈیشن, اور یہ کرن فاؤنڈیشن کا ایک اسکول ہے. تو میں تمہید کچھ نہیں بتاتا, میں اپنی بہن سے کہوں گا, اور یہ غور سے سنیے گا, یہ اتنی فیسینیٹنگ بات ہے کہ پاکستان کے مستقبل کی جو لائٹ ان دا ٹنل ہے نا, وہ آپ کو اس ٹنل سے نظر آئے گی ان شاء اللہ.
جزاک اللہ خیر, تھینک یو. کیا بتاؤں میں آپ کو, کرن
اب وہاں سے شروع کیجیے, جیسے اس بہن کی کہانی تھی اس سے میرا خیال ہے.
کوئی ایسی کوئی پلاننگ کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا, یہ نہیں تھا کہ میں نے کچھ سوچا ہوا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا یا اسکول بن جائے گا. یہ بس ایک سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بگ پلان ہوتا ہے نا, جس طرح وہ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ بگ پلان کیا ہے. اور ایک چھوٹی سی بچی تھی 8 ماہ کی, اور کسی جاننے والوں کے تھرو جن کو میں جانتی تھی ان کی فیملی سے تھی. اس بچی کے ساتھ چائلڈ ابیوز کا کیس ہوا تھا, اس کے بایولوجیکل فادر نے اس بچی کو 8 ماہ کی عمر میں دیوار کے اگینسٹ اسمیش کر دیا تھا. تو اس کے فزیکل انجریز تو تھیں ہی, لیکن میرے ذہن میں جو سارا وقت چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیسے ریزنیٹ کرے گا ایڈلٹہڈ میں, کیونکہ سب کانشیس مائنڈ میں تو وہ ایک واقعہ رہے گا, اور اس سے اس کی پرسنالٹی بھی بلٹ ہوگی, کون سی فیئرز اس کے زندگی میں آئیں گے. تو تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ مجھے تھی ان چیزوں کی, تو میں یہی سوچتی تھی. اور وہ بچی جب میرے پاس پہنچی, وہ اور ماں میرے پاس پہنچی کہ میری مدد کریں, اس وقت تو مجھے لگا تھا کہ وہ بچی شاید ایک ڈیڈ باڈی کی طرح میری گود میں تھی. تو میں اس وقت جناح ہاسپٹل گئی تھی سیدھا, اس زمانے میں میرا بھائی جناح ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا. تو وہ ایمرجنسی میں پتہ مت پر ہر ہارٹ بیٹ واز دیئر, پلس تھا, بلو تھے لپس, آنکھ ڈیمیج تھی, کالر بون یہاں سے ٹوٹ گیا تھا. مگر مستقل ذہن میں یہی تھا کہ یہ کیسے جا کے ایڈلٹہڈ میں کیا اس سے کیا مینیفیسٹ ہوگا. تو وہ بچی پھر ٹو کٹنگ دا اسٹوری شارٹ, وہ میرے ساتھ رہی اس دوران جب وہ ہیل ہوئی. اس دوران اس ماں سے بات چیت ہوتی رہی, تو وہ میرے گھر میں کوئی مہینہ 2 مہینہ وہ میرے ساتھ رہی. اس دوران وہ واپس یہاں آنا جانا کرتی تھی, وہ لیاری میں رہتی تھی, یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں بالکل اس کے اپوزٹ اس کا گھر تھا. اور پھر وہ میں اس سے سوالات پوچھتی تھی کہ آخر ہوا کیا. تو پتہ چلا کہ وہ جو ہسبینڈ تھا وہ ڈرگس پہ تھا. اور اس میں بہت فینومیناز تھے اس کی اسٹوری میں. اگر وہ میں فینومینا آپ کو بتاؤں تو بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ چھوٹی عمر میں پسند سے شادی کرتی ہے, تو ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ اب تم ہماری بغیر. تو اس ماں نے یہ کیا تھا, جس کی وجہ سے اس کا جو میکے کا سپورٹ سسٹم تھا
وہ
ڈسکنیکٹ ہو گیا, کیونکہ وہ ظاہر اس نے اپنی مرضی سے کی تھی, اور مرضی سے کی تھی اور چھوٹی عمر میں کی تھی. تو وہ پہچان نہیں پائی اس بندے کو, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈرگس پہ ہے. تو جب ڈرگس ہائی ہو جاتا تھا اس کو, تو پھر وہ غصہ کرتا تھا اور وہ واپس ماں کے پاس نہیں جا پاتی تھی. تو دیٹ از ہاؤ یہ ایک ابیوز اس کو بھی بہت مارتا تھا, بچی کو بھی. اور میں نے اسے یہ پوچھا کہ وہ اپنی بچی کو کس وجہ سے مارتا ہے, کیا صرف وجہ یہ ہے کہ وہ ڈرگ لیتا ہے؟ تو وہ چپ ہو گئی. میں نے کہا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ تو اس نے ایک بہت بڑی بات بولی. نہیں, یہ بڑے ریسرچ اورینٹیڈ الفاظ ہیں کہ ایک آدمی, ایک شخص اس پوائنٹ پہ پہنچتا کیسے ہے کہ وہ فیلنگز اس کی ختم ہو جاتی ہیں. کیا صرف ڈرگ اس کا ریزن ہے؟ ڈرگ کا ریزن کیا ہے پھر, روٹ کاز کیا ہے؟ تو یہ چیزیں پھر مجھے بہت ستاتی تھیں کہ اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے. تو ایونچولی پھر وہ گھر گئی, اور پھر اس نے اٹیمپٹ پھر کیا. تو اس نے 4 اٹیمپٹس کیے. جو لاسٹ اٹیمپٹ تھا وہ بہت یعنی فیٹل ہو سکتا تھا. تو اس کو کمرے میں بند کر کے ماں اور بچے کو ارد گرد آگ لگا دی تھی. تو اس نے پھر وہاں سے اپنے آپ کو نکالا. دیٹ از دا لاسٹ ٹائم وین شی کیم ٹو می. میں نے کہا اب بیٹھو, مجھے بتاؤ, میں ایک سوال تم سے پوچھنا چاہتی ہوں. تو اس سے میں نے صرف ایک سوال پوچھا, کیا تمہیں اس پہ بھروسہ ہے اور کیا تمہیں اس سے محبت ہے؟ وہ خاموش ہو گئی, اور پھر میری طرف دیکھ کے کہتی ہے نہیں. تو میں کہا پھر اس کا کیا آگے کیا ہے؟ اینڈ شی واز پریگننٹ وتھ اندر چائلڈ. تو اب یہ ایک سلسلہ پھر کہاں جاتا؟ تب میں نے پھر کنسلٹ کیا ایسے لوگوں سے جن کو میں بہت اپنا مینٹور مانتی ہوں, کہ پھر یہ ایک جائز راستہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے عورت کو, تو وہ کب اپلائی ہوتا ہے؟ کیا اس وقت اپلائی ہوگا؟ پھر اس کا ڈیوارس ہوا. لیکن ڈیوارس کے سارے جو پروسیس کے تھرو پھر ان کے ماں باپ کو منایا کہ آپ سپورٹ دیں اس کو, وہ بھی آ گئے پکچر پہ. लेकिन असल जो खौफ था इसको ये था कि अब मैं जब तन्हा हो जाऊंगी तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बच्चों को पालूंगी कैसे। तो वहाँ से फिर मैंने घर में इसको पढ़ना लिखना पढ़ना सिखाया। तो 2 साल किरण नहीं था, 2 साल सिर्फ एक माँ और एक बच्ची और एक वो जो प्रेग्नेंट थी एक और बच्ची से, उस दौरान घर में ही उसको, जो कोई भी करता मेरे ख्याल में, मेरी जगह कोई भी होता वो अपना पार्ट प्ले करता, एज मैं भी हाउसवाइफ थी उस वक्त, घर से काम करती थी, आई वॉज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, तो मैं घर से ही काम करती थी, तो मैंने उसको अपने घर की क्लिनिक में ही जॉब दी। और फिर उसकी वजह से मैं लियारी आने जाने लगी, और उस दौरान मुझे पता चला कि मेरी फैमिली जो मेरे हस्बैंड की फैमिली है वो यहाँ पे किसी एक छोटे से स्ट्रीट स्कूल को कुछ फंड्स देती थी, आते नहीं थे, लेकिन एक शख्स था जो हमारी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र था, वो लियारी से में रहता था। एक कोइंसिडेंस, ये डॉट्स कनेक्ट होते हैं ना इंसान के, बिग प्लान आपको नज़र आने लगता है कि क्या था। एंड देन तो मेरी हस्बैंड को पता चला कि मैं लियारी आना जाना कर रही हूँ, मैं लियारी के अंदर कोई स्पेस ढूंढ रही थी जहाँ से मैं बैठ के अब्यूज़ और उसके इफ़ेक्ट्स पे बात कर सकूँ कि चाइल्ड अब्यूज़ के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। एक माशरा पूरा साइकिल को रिपीट करने के लिए बड़ा हो जाता है, चाहे दूसरे पे जुल्म करता है या ख़ुद पे जुल्म करता है, ये दोनों जुल्म ही हैं। तो वहाँ फिर ये स्कूल का मुझे पता चला कि ये हम ऑलरेडी फ़ंड कर रहे हैं, मैंने कहा मैं देखना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी कभी नहीं आए थे और वो 6-7 साल से वहाँ पैसे जा रहे थे, बस वहाँ जब हम आए तो जिससे आप मिले थे सोराब सर
जी, जी
वो यहाँ प्रिंसिपल थे
जी,
और वो उसका नाम किरण था, मैं नाम नहीं, नहीं उस स्कूल का,
स्कूल का नाम
मैंने फिर नाम नहीं बदला। और उनसे बैठ के बात की कि वहाँ हर एज के बच्चे छोटे से 2 कमरों में थे, हर एज ग्रुप के, वो स्ट्रीट स्कूल टाइप का था। तो फिर उनको मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि क्या हम यहाँ छोटे बच्चों का स्कूल शुरू कर सकते हैं जो 2 से 2.5 साल के हों, और उनके साथ उनकी जो प्राइमरी केयर गिवर है जो कि हमारे माशरे में माँ है, और हमारा यकीन भी है ममता के ऊपर बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, रब ने अपने प्यार को कंपेयर किया है माँ के प्यार से। उसका होना और ना होना कितना इफेक्ट करता है बच्चे को। एनीवेज सॉरी।
फिर आपने स्कूल खोला,
फिर उन बच्चों को जो 120 बच्चे थे उस स्कूल के अंदर जो बड़े हर एज के थे, उनको पहले हमने रिलोकेट किया, बड़ी स्कूल्स में डाला। तो वो पेरेंट्स भी खुश हो गए कि हम छोटे से 2 कमरों से निकल के बड़ी स्कूल जा रहे हैं। तो जो पहले डोनर्स थे वो उन बच्चों के थे, उन बच्चों को हम इंटर तक लेके गए, वो हमारे पुराने किरण स्कूल के बच्चे थे, वो हमारे साथ रहे आने वाले 10 साल, और उन 2 कमरों को फिर कन्वर्ट किया इंटू अ प्री स्कूल। और बाहर हमने सारे बोर्ड्स लगाने शुरू कर दिए कि अच्छा यहाँ पे छोटे बच्चों की तालीम होगी माँ के साथ। अब पहले पहले तो कम्युनिटी के लोग आके देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है इधर, माँ कहाँ से पढ़ेगी, कैसे होगा, सवालात बहुत थे लोगों के। और उस स्कूल की पहली बच्ची मैंने जहन में सोची हुई थी कि ये सिदरतुल मुंतहा होगी, वो बच्ची जो 8 माह की, वो उस वक्त तक 2.5 साल की हो चुकी थी, तो वो पहली होगी। और उसके साथ 19 और मैं ऐसे बच्चे ढूंढना चाहती थी जिनकी लाइफ में कहीं ना कहीं 2 से 3 एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हों, क्योंकि उन 2 सालों में जो मैंने करिकुलम लिखने की कोशिश की थी वो सिर्फ वो थे इंटरवेंशंस जो मैंने मुंतहा के साथ किए थे, उसकी माँ के साथ किए थे, वो मैं लिखती थी। तो मुझे लगा कि ये तो एक करिकुलम सा आता जा रहा है एक माँ और बच्चे के साथ जो किया है, तो अगर ये 20 बच्चों के साथ अप्लाई करें तो क्या हम साइकिल ऑफ अब्यूज़ को रिवर्स कर पाएंगे, क्या वो बच्चे जिनमें पोटेंशियल है बड़े होकर क्राइम में जाने का या दूसरे पे जुल्म करने का या ख़ुद पे जुल्म करने का या रिएक्टिव हो जाने का या रिवेंजफुल हो जाने का, क्या हम उसको रिवर्स कर पाएंगे। इट वाज एन एक्सपेरिमेंट, आई डिडंट नो, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ मदर, मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे और मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने खुद फील किया अपने बच्चों के लिए या अपने आप के लिए, बस उसी को, लेकिन मैंने पढ़ा बहुत, पढ़ती रही किताबों के थ्रू, फिर करीब के लोग थे जो मेरे साथ अटैच थे, हमेशा उनको हर चीज़ के लिए कॉल करती रही, जिसमें सईद भाईजान सरे फहरिस्त हैं, वो डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, कुछ मुझे समझ नहीं आए तो अब मैं क्या करूं, अब ये इसका क्या मतलब है, किताबें क्या कह रही हैं, मेरे अबू डॉक्टर हैं, भाई सारे डॉक्टर्स हैं, उनको मैं पूछती रहती थी। और सबसे बड़ी गाइडिंग लाइट तो आपकी अपनी अंदर की फीलिंग होती है। तो बस उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 19 और बच्चे मुझे मिल गए वर्ड ऑफ माउथ से, उसमें सोराब सर ने बहुत मदद की, सोराब कहाँ यहाँ चले गए, सोराब ने बहुत मदद की वो बच्चे ढूंढने के लिए। मैंने उनसे यही कहा मुझे ऐसे बच्चे बताइए कि जिनकी ज़िंदगी में 1 या 2 मुश्किलात हैं बड़ी, तो ऐसे बच्चे मिले जिनके फादर्स ने उनको अबैंडन कर दिया, ऐसे बच्चे मिले कि जिनकी माँ नहीं है, वो बच्चे के जो कि बीमारी का शिकार या उनके माँ बीमारी का शिकार है, तो घर में घराने के अंदर बहुत पावर्टी और बहुत मुश्किलात थी। फिर वो करिकुलम उन 20 बच्चों पे अप्लाई हुआ, कमरे सिर्फ दो थे, वॉर जोन था उस वक्त, यहाँ एंटर होना बहुत मसले थे, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई पहले साल में, तो बहुत कुछ हुआ लेकिन एक साल में ट्रस्ट गेन हो गया कम्युनिटी का। और क्योंकि मेरे पास कोई कैंपस नहीं था और जहन में मेरे ये भी था कि इन बच्चों को वही तालीम मिले जो मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ, तो अगर मेरे बच्चे मेरे बच्चे कराची ग्रामर स्कूल गए, मैं कहा अगर मेरे बच्चे कराची ग्रामर स्कूल गए तो ये बच्चे उससे कम कहीं नहीं जाएं, क्योंकि मुझे कहा गया है जैसा पहनो वैसा पहनाओ, जैसा खाओ, तो फिर ये स्कूल गरीब का और ये स्कूल अमीर का क्यों होता है? और इस वक्त मेरे पास स्कूल नहीं है ऐसा कि जो अमीरों के स्कूल के मदे मुकाबले हो, तो इस वक्त तो मुझे उनको तैयार करके मेन स्ट्रीम में दाखिल करना है। मेन स्ट्रीम में रैट रेस है, इंटरव्यू ही इतना सख्त होता है, माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं कि भाई अंग्रेज़ी आती है कि नहीं आती, पहनना ओढ़ना आता है कि नहीं आता, वो पहले इंटरव्यू में, तो इसलिए माँ और बाप की ग्रूमिंग। एक साल के अंदर, साल भी नहीं लगा, 8 या 9 महीने लगे ना, 8 महीने लगे थे, और बच्चे वो 19 जो 20 बच्चे थे वो तैयार हुए और हमने एक एक करके उनको एडमिशन्स के लिए, और हम बैठ के इंतज़ार करते थे अब एडमिशन होगा कि नहीं, और एक एक करके रिजल्ट्स आने शुरू हुए। तो जो पहली पहली स्कूल्स थी जहाँ बच्चे गए उसमें सेंट माइकल, हैप्पी होम, हबीब पब्लिक, यहाँ बच्चों ने क्लियर किया
जी।
फिर उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के पास गई, मैंने कहा एक एक बच्चा हर कोई अडॉप्ट करे, तो उनको हम एंजल पेरेंट्स कहते हैं। तो एक दोस्त ने एक बच्चे की जिम्मेदारी ले ली जो आज तक ली हुई है, तो वो बच्ची मैं मुंतहा आज माशाल्लाह से बहरिया यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर ऑफ साइकोलॉजी में, जिसने उसका हाथ 2.5 साल की उम्र में पकड़ा था वो आज तक उसको सपोर्ट करती है, उसकी तस्वीरें उसके घर में फैमिली पिक्चर्स के साथ लगी हुई हैं। वो बच्चा, एक बच्चा हमारा हबीब यूनिवर्सिटी चला गया, उसको जिसने शुरू से संभाला है वो आज हबीब यूनिवर्सिटी में। तो ये सारे बच्चे, एक इनकी बेटी है लारेब, वो माशाल्लाह बहरिया यूनिवर्सिटी में, वो भी साइकोलॉजी कर रही हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की डॉक्टर साहब के इस पूरे प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे एस्पायर कर गए हैं टू गो इनटू साइकोलॉजी। आई थिंक दे हैव सीन द बिलीफ ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस ऑन देम
एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट,
और अब वो उसके बारे में स्पोक्स पर्सन की तरह बोलते हैं। तो मैंने आज भी उनको कहा है कि वो ज़रूर आपसे आके मिलें जब हम वहाँ लंच पे जाएंगे, उन बच्चों से जो हमारे जो फर्स्ट बैच है, क्योंकि अब उनके हाथ में ये डोर है कि अब आपने नीचे बच्चों को पढ़ाना है। और वो मैं उनको यही कहती हूँ कि अब हमने आपको तैयार किया है, अब नीचे आप तैयार करें। 10 साल डाउन द लाइन इसी तरह 20-20 बच्चे हर साल लेके उनको मेन स्ट्रीम करते चले गए। और फिर शाम में हमने किरण घर खोला ताकि वो बच्चे जो मेन स्ट्रीम जाते हैं वो जब 2-3 बजे स्कूल से वापस आते हैं तो लॉस्ट ना हो जाएं। तो 8 बजे तक हम खुला रखते थे कि आके हमारे पास स्टडी करो। कैम्ब्रिज स्कूल्स जा रहे थे या खान स्कूल्स जा रहे थे, उनके लिए डिफ़िकल्ट था, आईटी सिस्टम्स बनाए कि आप यहाँ पढ़ो, ट्यूटर्स दिए, कोचेस दिए, मेंटर्स दिए, साइकोलॉजिस्ट थे, तो वो शाम तक वहाँ रहे। वो सिलसिला आज तक चल रहा है। उनकी माएँ जो इस प्रोग्राम के अंदर मदर चाइल्ड प्रोग्राम है, जब उसमें आई तो वो कहीं नहीं गई, वो आज तक आ रही हैं। तो उनके सेशंस तो ख़त्म ही नहीं हुए, बातें ख़त्म ही नहीं होती डॉक्टर साहब मदर्स के साथ। कोई हमसे पूछता है कि करिकुलम बताओ, तो करिकुलम मैं इनसे कहती हूँ करिकुलम तो लिख कर दे, वो कहती है कैसे लिखूँ, बातें ख़त्म ही नहीं होती। माएँ आती हैं हर बार अपना कोई प्रॉब्लम लेके और हम उसके ऊपर अपना सेशन तैयार करके उनके साथ। तो मेरी दोस्तें हैं समिया शुरू से हैं, तो इन्होंने दोस्तों ने छोटे छोटे ग्रुप्स माओं के लेने शुरू कर दिए। माएँ तो बहुत है ना यहाँ, तो फिर 1000 माएँ हैं, तो फिर जैसे 40-50-60 इनके पास हैं, तो एक और है हमारी दोस्त, उनके पास 50-60 हैं, तो वो ग्रुप्स बनते गए और इनके ये उनकी मेंटोर बन गई हैं। तो अंडर द स्काई हर चीज़ पे बात करती हैं, इंग्लिश है, आईटी है, कुकिंग है, हाउसवाइफ कैसे, अच्छी बीवी कैसे बनना है, हंसना कैसे है, यहाँ तक भी कि खुश कैसे रहना है, अपनी चीज़ों को फाइट कैसे। उतनी उनके अंदर एम्पावरमेंट आई है माओं के अंदर माशाल्लाह। और एम्पावरमेंट का भी मैं महमूद साहब से भी पहले यही बात करी थी कि कॉन्सेप्ट में बहुत फ़र्क है। लोग एम्पावरमेंट को समझते हैं कि औरत को अब घर छोड़ के बाहर निकल जाना है। एम्पावरमेंट तो उसकी सबसे बड़ी एम्पावरमेंट ये है कि अब उसको घर के अंदर डिसीशन मेकिंग में रिस्पेक्ट दी जा रही है, यानी वो उसका हिस्सा है बराबर कि आ जाओ बैठो हम मिल के फैसले करते हैं। वो नहीं था, वो फैसलों में शामिल नहीं थी, किसी भी फैसले में हर फैसला अलग ही एक लेता था। तो इनकी बेटी इस पे बड़ा अच्छा बोलती है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ उसकी वीडियोस वगैरह भी शेयर करूँगी। तो बच्चे माशाल्लाह अब आगे आ गए हैं, अब मुझे कम बोलना पड़ता है, बच्चे ही ज़्यादा बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल डाउन द लाइन फिर कम्युनिटी ने कहा कि ये 20-20 बच्चों से कैसे काम चलेगा, आप कुछ इसको एक्सपेंड करें। मैं ज़रा थोड़ा डरती थी एक्सपेंशन से, आज भी डरती हूँ, मुझे एक्सपेंशन फियर है। मुझे लगता है जब बहुत जल्दी एक्सपेंड करते हैं तो क्वालिटी फिर वो नहीं रहती, क्योंकि हम वर्टिकल काम कर रहे हैं एक एक बच्चे के साथ, उसकी पूरी फैमिली, तो मुझे लगता है फिर हमारा काम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और शायद फिर हर बच्चे की हर बात हमें पता नहीं होगी। तो गवर्नमेंट स्कूल की अडॉप्शन का जो आइडिया थी वो कभी भी मेरे जहन में नहीं आती अगर डॉक्टर अमजद साकिब ने मुझे पुश ना किया होता। मैं आज तक हर जगह ये कहती हूँ कि उन्होंने अगर मुझे ना कहा होता कि नहीं हम आपको सिखाते हैं, मैंने कहा नहीं मुझे गवर्नमेंट से डर लगता है, मुझे नहीं आता गवर्नमेंट डील करना, उन्होंने कहा हम आपको आपके साथ होंगे। तो उन्होंने इनिशियल जब ये अडॉप्ट हुआ था स्कूल, वो हमारी फाउंडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आए और उन्होंने कहा मुझे आप बोर्ड पे ले लें, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। तो उन्होंने इनिशियल जो पहला साल था इस गवर्नमेंट स्कूल को अडॉप्ट करने में उन्होंने और उनकी टीम ने बड़ा हमें साथ दिया, और फिर उसके बाद जब ये हम कॉन्फिडेंट हो गए एक साल में तो उन्होंने कहा अब आप लेकर चलें। तो बहुत बड़ी बात होती है जब कोई आपको साथ देता है, गाइड करता है, और उन्होंने गाइड किया और टीम मेरी माशाल्लाह ऐसी है कि कुछ भी हम नया स्टेप उठाने जाते हैं हम टीम की मीटिंग करते हैं क्या करूं, ये हम करें, हम बलूचिस्तान चलें, वो बलूचिस्तान जाना एक हमारे लिए इतना बड़ा प्रोसेस था, कहते हैं आप सोचती क्यों हैं, आप कर लें, हम सब आपके साथ करें। मेरे ख्याल में ऊपर से अच्छे लोग, बोर्ड के माशाल्लाह इतने सपोर्टिव, मेरी टीम के अच्छे लोग, तो फिर तो मैं तो सैंडविच ही हो गई ना, फिर तो मैं ना तो कर ही नहीं सकती।
अगर आप इजाज़त दें तो अगली स्टोरी ना एक जैसे आउटसाइडर के तौर पर मैं सुनाता हूँ।
जी जी सर।
तो ये कि आप अभी सुबह ही यहाँ आए हैं, स्कूल के बारे में और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे दोस्तों ने बताया था, तो मैं अभी आपको मिलवाता भी हूँ भाई महमूद अहमद साहब, जो कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है करेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन, जिसमें मैं भी एक कारिंदे के तौर पर काम करता हूँ। तो हम यहाँ आए थे कराची में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए, तो महमूद साहब मुझे यहाँ लेके आए, मैं उनसे अभी भी आपको मिलवाता हूँ। तो यहाँ आके मैंने ये देखा कि ये एक स्कूल है जो कि सरकारी स्कूल था, जैसे सारी सरकारी स्कूल होते हैं, इस स्कूल को अडॉप्ट किया है किरण फाउंडेशन ने
जी।
और उसके बाद इस स्कूल के अंदर ख़ास बात यह है कि माँ और बच्चा दोनों को दाखिला दिया जाता है, और वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि जो सर सैयद मरहूम कहा करते थे कि मुझे अगर आप अच्छी माएँ देंगे तो मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा, तो ये है कि वो शुरू से जो इंस्टीट्यूशन जो पेरेंटिंग का मेन पिलर है वो माँ है। तो यहाँ बच्चे को भी दाखिला दिया जाता है और माँ को भी दाखिला दिया जाता है, और माँ हफ्ते में चार दिन आती है और बच्चे सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, और यहाँ वो तमाम तरबियत होती है जो एक माँ के ज़िम्मे है। और उसका एक सबूत यह है कि यहाँ सब टीचर्स को माँ ही कहते हैं, और बहन सबीना को भी सारे माँ ही कहते हैं और टीचर्स भी माँ ही कहती हैं। और ये एक ऐसी यूनिक जगह है कि जिसको बगैर सीइंग इज़ बिलीविंग आके आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या है। इंशाल्लाह मैं जैसे वक्त गुजरेगा इसके बारे में मज़ीद भी इंशाल्लाह आपको तारुफ कराऊंगा, मगर ये वो एक इदारा है कि जिस इदारे में कौम बनने की बुनियाद रखी जा सकती है इस तरह के और इदारों में, और अगर एक जगह पर ये किया जा सकता है तो पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में किया जा सकता है।